आज के मुख्य समाचार। कल से मेलबर्न में दोबारा शुरू हो रहे लॉकडाउन को तोड़ने वालों पर विक्टोरिया सरकार की बड़े जुर्माने की चेतावनी, ब्राजील के राष्ट्रपति को हुआ कोविड-19 संक्रमण और आज से फिर शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। प्रस्तुत है समाचार विस्तार से। विक्टोरिया की सरकार मेलबर्न में कल से दोबारा शुरू हो रहे लॉकडाउन पर सख्त होने के संकेत दे रही है, जिनमें लोगों को सिर्फ चार चीजों के लिए घर से निकलने की अनुमति है, यानी काम, शिक्षा, किसी की देखभाल और व्यायाम के अलावा आप घर पर ही रहें। मेलबर्न के मेट्रो इलाके के निवासियों को रीजनल विक्टोरिया में जाने की परमिट की आवश्यकता होगी। ये नियम रीजनल क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी फैलने से रोकने को बनाया गया। सड़कों पर बड़ी संख्या में पुलिस यात्रा प्रतिबंध लागू करेगी, यहां तक कि ट्रेनों के यात्रियों पर भी निगरानी होगी। विक्टोरिया की पुलिस मिनिस्टर लिसा नेवले कहती हैं कि जो नियम तोड़ेंगे उन पर फाइन लगाया जाएगा।
Can I ask Victorians, can I ask Melburnians to follow the advice of Victoria Police? They're there to give warnings, they're there to give advice, but they will issue fines where people are breaching those directives.
विक्टोरिया में मंगलवार को कोरोना वायरस के 134 नए मामले सामने आए, जो सोमवार के 191 मामलों से कम है। लेकिन परेशानी का सबब ये कि इनमें से 124 मामले कम्युनिटी संक्रमण के हैं। राज्य के अस्पतालों में वायरस के कारण 41 लोग भर्ती हैं, इनमें से 7 इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। विक्टोरिया के प्रीमियर डेनियल एंड्रयूज कहते हैं कि विक्टोरिया की बाकी देशों की तुलना में स्थिति गंभीर है, लेकिन प्रशासन हालात सुधारने को कड़ी मेहनत कर रहा है।
No one wanted to be in this position, but again, I don't get the luxury of ignoring this. I don't get the luxury of saying, well, it won't be popular to do this. You've got to make the tough calls. That's what I've done. We'll get to the other side of this, though, and we'll provide all the support that is needed for businesses, for individuals. It'll be difficult, very difficult.
फेडरल ट्रेजरर जॉश फ्रेडनबर्ग ने कहा कि विक्टोरिया में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकना ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जरूरी है। वे कहते हैं कि आंकड़ों के अनुसार राज्य के लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को हर हफ्ते $1 बिलियन का नुकसान होगा। श्री फ्रेडनबर्ग ने बताया कि विक्टोरिया में संक्रमण में ताजा तेजी से पहले अर्थव्यवस्था के सकारात्मक संकेत थे, लेकिन अब ग्राहकों का भरोसा टूटा है। उन्होंने स्काई न्यूज से कहा कि फेडरल सरकार विक्टोरिया को हर संभव मदद देगी।
Both the Prime Minister and I have talked about extending income support to those who need it with a new phase, and obviously we'll announce the details of that on the 23rd of July. But we do recognise that some sectors of the economy are doing it tougher than others, and in the case of Victoria, obviously they're going through a challenging period.
खबर भारत की। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 22,752 नए मामले सामने आए। मंगलवार को 482 लोगों की जान भी गई। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा अपडेट के मुताबिक देश में अब कोरोना के 264,944 एक्टिव केस हैं। इस महामारी से अब तक 20,642 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। वहीं 4,56,000 लोग रिकवर होकर घर लौट गए हैं। कोरोना के मामले सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हैं। राज्य में मंगलवार को संक्रमण के 5,134 नए केस सामने आए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक यहां अब तक 9,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 5,000 लोग केवल मुंबई से हैं। वहीं कोरोना से दूसरे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य तमिलनाडु में 3,616 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 1,18,000 हो गई। सूबे में 45,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। तमिलनाडु में कोरोना से मंगलवार को 65 लोगों की मृत्यु हुई। जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,636 हो गई। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 2,008 नए मामले सामने आए। इस दौरान 50 लोगों की मृत्यु भी हुई। वहीं संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,02,831 हो गई। इसके अलावा कोरोना वायरस की इस महामारी की वजह से अब तक दिल्ली में 3,665 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना मामलों में भारत में गुजरात चौथे नंबर पर और पश्चिम बंगाल पांचवें नंबर पर है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत अमेरिका ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। अगर प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमित मामलों की और मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति थोड़ी बेहतर लगती है। खबर भारत की ही। भारत के पूर्वी लद्दाख इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीनी सेना की वापसी पर निगरानी के लिए भारतीय सेना कड़ी नजर बनाए हुए है। इस पूरे घटनाक्रम से परिचित भारत के 4 बड़े अधिकारियों ने बताया कि दोनों सेनाएं 24 घंटे के भीतर सैनिकों के बीच 4 किलोमीटर का बफर जोन बनाने पर काम कर रही हैं। चीनी सेना PLA ने पेट्रोलिंग पॉइंट 15 यानी हॉट स्प्रिंग से 2 किलोमीटर पीछे हटने का निर्णय लिया और बुधवार शाम तक PP-17 यानी गोगरा से भी वे पीछे हट जाएंगे। इसी अनुपात में भारतीय सेना के सैनिक भी पीछे हटे हैं। सेना के ही एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि दोनों सेनाओं ने पहले ही गलवान घाटी में 4 किलोमीटर का बफर जोन बना लिया है। आपको बता दें कि गलवान में ही 15-16 जून को हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक और नामालूम नंबर चीनी सैनिक शहीद हुए थे। बफर जोन बनने के बाद इस क्षेत्र में दोनों सेनाओं की गश्त गतिविधियों पर अस्थायी रूप से रोक लगेगी। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने इसे एक आवश्यक कदम बताया है। प्रस्तुत है करेंसी समाचार। ये समाचार मिलने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का मूल्य चल रहा था 69.39 अमेरिकी सेंट्स और 51.93 भारतीय रुपये। पेश है खेल की खबरें। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच आज यानी बुधवार से साउथहैम्पटन में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच से 117 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी होगी और ये सीमित ओवरों की क्रिकेट के चलन के बाद पिछले 46 वर्षों में पहला अवसर होगा जबकि 100 से भी अधिक दिन तक कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला गया। कोविड-19 महामारी के कारण 15 मार्च 2020 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ठप पड़ा है और अब इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच जैव सुरक्षित वातावरण में खाली स्टेडियमों में इसकी शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच सिडनी में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय के रूप में खेला गया था। वनडे और फिर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के आने के बाद से बीच बीच में कुछ अवसरों पर टेस्ट मैच 100 दिन से अधिक अंतराल पर खेले गए लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL सहित विभिन्न घरेलू लीग शुरू होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला था। इससे पहले 1972 में 114 दिन और 1973 में 113 दिन तक कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला गया था। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत 5 जनवरी 1971 को हुई थी लेकिन पहले 4 वर्षों में सिर्फ 15 मैच खेले गए थे। यही वजह थी कि 19 अगस्त 1971 से 16 फरवरी 1972 तक कोई मैच नहीं खेला गया। इसका मतलब 181 दिन तक कोई मैच नहीं हुआ जो पिछले 5 दशकों में 2 मैचों के बीच का सबसे बड़ा अंतराल था। जब तक सीमित ओवरों की क्रिकेट नहीं खेली जाती थी तब तक 2 अंतर्राष्ट्रीय मैचों या यूं कहें टेस्ट मैचों के बीच लंबा अंतराल देखने को मिलता था। मसलन सबसे बड़ा अंतराल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मैच के बाद तीसरा टेस्ट मैच होने में 642 दिन का था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हुआ था। पेश है मौसम की जानकारी। मौसम विभाग के अनुसार कल यानी गुरुवार को पर्थ में आंशिक बादल, अधिकतम तापमान रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री। एडलेड में ज्यादातर धूप, अधिकतम तापमान रहेगा 16 डिग्री, न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में धूप खिली रहेगी, अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस। होबर्ट में भी धूप, अधिकतम तापमान 13 डिग्री, न्यूनतम 2 डिग्री सेल्सियस। कैनबरा में सुबह फॉग रहेगा, फिर आंशिक बादल, अधिकतम तापमान 14 डिग्री, न्यूनतम 1 डिग्री सेल्सियस। सिडनी में आंशिक बादल, अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री। ब्रिस्बेन में बूंदाबांदी हो सकती है, अधिकतम तापमान रहेगा 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री। डार्विन में धूप खिली रहेगी, अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।